नंबर दो, मध्यकालीन यूरोप में अर्थव्यवस्था और समाज, 11वीं से 14वीं सदी। मध्यकालीन युग विशेष रूप से 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ऐसा समय नहीं था जब यूरोप में पूरी तरह शांति का बोलबाला हो। इस काल के आसपास जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। 1950 के बाद 950 के बाद इटली में और इसके कुछ समय बाद उत्तरी मध्य यूरोप के देशों में यह वृद्धि सबसे ज्यादा तेज रही 1950 के बाद। यह भी कहा जाता है कि इसी समय पहली बार नगर की आबादी 20,000 से ऊपर पहुंच गई। उस समय सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर पेरिस, वेनिस, फ्लोरेंस, जिनेवा थे, जबकि इससे कम जनसंख्या वाले नगर वोलोन, बार्सिलोना, सेनिया, सेना, मिलान, पोलेमो, लंदन, घेंटी, स्मोलेंस्क भी तेजी से उभर रहे थे। 1348 में यूरोप में प्लेग फैलने से पहले सारे यूरोप की कुल जनसंख्या 7,50,00,000 के आसपास थी। प्लेग के कारण इस जनसंख्या में 20 से 25% तक कमी हो गई। आगे चलकर मानवीय जनसंख्या में इस भारी गिरावट के सारे यूरोपीय महाद्वीप की सामाजिक आर्थिक संरचना के संदर्भ में बड़े महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इनमें एक परिणाम यह भी था कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसके सामंतों के सामने श्रमिकों की कमी की समस्या पैदा हो गई। इसमें सामंत प्रणाली थे, एक प्रकार का संकट उत्पन्न हो गया और विवश होकर उन्हें कुछ काम चलाऊ व्यवस्था बनानी पड़ी। यूरोप में जमींदारी प्रथा उभरनी शुरू हो गई जिसके अधीन धीरे धीरे सामंती करों का स्थान लगान ने ले लिया। इसी के साथ साथ बंधुआ मजदूरों के स्वरूप में भी परिवर्तन आता गया जिससे इंग्लैंड जैसे कुछ स्थानों में कृषि दास प्रथा समाप्त हो गई। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, रूस तथा बाल्टिक देशों में यह प्रथा काफी समय तक बनी रही। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जिसके चलते सामंती बंधन टूटे वह था 11वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय व्यापार का पुनरुत्थान और मुद्रा अर्थतंत्र की शुरुआत। कई कारणों से व्यापार अब अधिकाधिक लाभदायक होता गया, जैसे प्रथम जिहादों की सफलता जिसने भूमध्य सागर को यूरोपीय व्यापार के लिए खोल दिया। पूर्वी यूरोप के मैदानी और बाल्टिक तटीय इलाकों का उपनिवेशीकरण और पूरी अवधि में जिंसों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी। इस अवधि में बड़े पैमाने पर व्यापार दो ही क्षेत्रों में सीमित था। ये प्रारंभ में ही स्वयं ही विकसित हुए पर बाद में एक दूसरे पर निर्भर हो गए। भूमध्य सागरी व्यापार पर अपनी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इटली का प्रभुत्व था और उत्तरी यूरोप के संकुचित समुद्रों में निचले देशों का प्रभुत्व था। पहले का संबंध पूर्वी देशों के उत्पादनों जैसे महंगे मसालों से था जिसे वे यूरोपीय बाजारों में लाते थे और बदले में यूरोपीय वस्तुएं, लकड़ी, लोहा, आभूषण और कागज पूर्वी क्षेत्रों को भेजते थे। बहरहाल व्यापार के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन 13वीं शताब्दी के अंत में हुआ। 1277 तक जिनेवा की व्यापारिक नौकाओं का भूमध्य सागर और फ्लैंडर्स से सीधा संबंध हो गया था और इस प्रकार उन्होंने सैम्पेन मेलों की उपेक्षा कर दी जो कि साहसी व्यापारियों के मिलने का महत्वपूर्ण केंद्र था। 1317 तक वेनिस वासियों तथा फ्लोरेंस वासियों दोनों के पास काफी बड़े समुद्री जहाज हो गए जो पतवार और पाल दोनों का इस्तेमाल कर सकते थे और नाविक भी ज़्यादा बड़ी संख्या में अट सकते थे। इन तकनीकी विकासों से न सिर्फ व्यापार में बढ़ोतरी हुई बल्कि व्यापार करना भी सुगम हो गया। उदाहरण के लिए वेनिस के जहाज़ों पर नाविकों की ज़्यादा संख्या होने से अब समुद्री लुटेरों से लड़ना आसान हो गया। उत्तर से आने वाले मूल्यवान सामान से इटली के उद्योगों को, विशेषतः फ्लोरेंस के उद्योगों को भारी बढ़ावा मिला। वहाँ के कारीगरों ने बढ़िया अंग्रेजी ऊन का और पूर्व से आए श्रेष्ठ रंगों का उपयोग करके सुंदर माल तैयार किया। फ्लोरेंस की तरक्की कुल मिलाकर तीन परस्पर संबंध बातों पर निर्भर रही, बैंकिंग, वाणिज्य और उद्योग। यद्यपि वेनिस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काफी कब्जा था तथा जिनेवा ने भी समुद्री व्यापार और ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के मामले में बढ़त हासिल कर ली थी, फ्लोरेंस का व्यापार भी किसी कदर कम नहीं था। समूचे यूरोप में उसके बैंकिंग प्रसार का सानी नहीं था। मिलान, एविगनन, लायंस, पेरिस, बर्गस और लंदन सभी जगह फ्लोरेंस के बैंकिंग परिवार फेस्का, बाल्टिक, बार्डिर, पेरूरी, मेतिजी उच्च वित्त के क्षेत्र में दंत कथाओं के नायकों की तरह प्रसिद्ध है। इससे भी अधिक विशिष्ट बात यह हुई कि किस प्रकार के परिवर्तनों से पूंजी के इकट्ठे हो जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। इटली के व्यापारी, जिनको जन्मजात व्यापारी कहा जाता था, अपने एजेंटों और सहयोगियों के व्यापक जाल के माध्यम से सारे यूरोप में फैले हुए थे। इस प्रकार इटली के व्यापारी आधुनिक व्यापारियों के पूर्व नमूने कही जा सकते हैं। साथ ही पहले पहल उन्होंने ही बैंकों के इतने विशाल विस्तार और निजी क्षेत्र में संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना की थी। उद्योगों में पूंजी निवेश की संभावनाएं निसंदेह सीमित रहीं, पर कुछ मामलों में जहां कच्चे माल का आयात होता था और तैयार माल के अधिकांश का निर्यात किया जाता था, वहां आयात निर्यात व्यापार से जुड़े हुए व्यापारियों ने यह महसूस किया कि उद्योगों पर नियंत्रण बड़ा लाभप्रद है। इस बारे में फ्लोरेंस के उन उद्योग के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। 1338 तक नगर में ऊनी कपड़े बनाने वाले लगभग 200 निर्माता थे और उनके कारखानों में लगभग 30,000 व्यक्ति काम करते थे। अनेक व्यापारी निर्माता, जिनमें कुछ साहूकारी बैंक का काम भी करते थे, अपने उद्योगों के कारण इतने अधिक शक्तिशाली हो गए थे कि राज्यों के राजनीतिक भाग्य के नियंत्रणकर्ता भी बन बैठे। 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस के अंतर्गत परिवार की शक्ति में असाधारण वृद्धि इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। कुछ कुछ इटली के ही ढंग के पूंजीगत उद्यम के विकास को उत्तरी जर्मनी के हैंसिएटिक लीग के व्यापारियों में भी देखा जा सकता है, जो उत्तर की लकड़ी, राल, अभ्रक, अनाज, फर, सूखी हेरिंग मछलियों का व्यापार करते थे। परंतु यह समानता यहीं तक सीमित रही, क्योंकि अपने इतालवी प्रतिरूप के विपरीत जर्मन व्यापारी पूरी तरह व्यावसायिक पहलू पर ही निर्भर रहे। इससे लीग अधिक सत्तावादी बन गई और उसके संगठन में विविधता नहीं आ पाई। उत्तरी जर्मनी से भिन्न दक्षिणी जर्मनी अपने खनिज और धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, जिसके साथ फगर, फ्लेवेलसर और होच स्टेलर के बैंक जैसे मध्यकालीन साहूकारों या बैंकरों का नाम जुड़े हुए हैं। फगरों का विस्तार अपने क्षेत्र से बाहर लिस्बन, एंटवर्प, लियोन, वेनिस और रोम तक भी था, तथा कुछ समय तक वे राजा बनाने वाले के रूप में बदनाम थे। इटली या जर्मनी के व्यावसायिक और औद्योगिक विस्तार की तुलना में उस समय फ्रांस मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश था। कृषि उत्पादनों, मुख्यतः अनाज, शराब और नमक की उसके पास बहुतायत थी। कुछ छुटपुट उद्योग भी थे जो लिनन, कपड़ा तैयार करते थे। इस प्रकार की वस्तुओं के निर्यात के कारण फ्रांस के बंदरगाहों जैसे बोदी, ला रोसेल और नांतेस में कुछ चहल पहल रहती थी। परंतु जिस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया वह इटली के एजेंटों और बिचौलियों की उपस्थिति थी। ये एजेंट और बिचौलिए फ्रांसीसी व्यापारियों के लाभ को खाए जा रहे थे। व्यापार के पुनरुत्थान ने, जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है, फिर से नगर बाजारों की स्थापना की। विकसित होती मुद्रा अर्थव्यवस्था ने स्वतः पूर्ण सामंती क्षेत्रों की रीढ़ ही तोड़ दी। किसान और जमींदार दोनों अपना माल नगर बाजार में बेचते थे। सामंती मीनर प्रणाली में अधिकाधिक मुद्रा के प्रवेश से उसकी पूरी आंतरिक संरचना में भारी परिवर्तन हुए। अनेक जमींदारों को लगा कि पैसे के बदले खेत बटाई पर उठाना ज़्यादा लाभदायक होगा। 14वीं शताब्दी में मजदूरों की कमी भी हो गई, साथ ही साथ जमींदार बटाईदारों द्वारा दी जाने वाली कर राशि पर ज़्यादा निर्भर होते गए, जिसके चलते सामंती व्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ा। उत्तर मध्यकालीन यूरोप के नगरों में ऊंचे कुल में जन्म लेना सामाजिक प्रतिष्ठा का एकमात्र निर्धारक नहीं रहा। परिवर्तनशीलता ही नए नगरों का मुख्य लक्षण हो गई, न कि सिर्फ पैसा ज़्यादा तेजी से आ रहा था, बल्कि यह उन लोगों के हाथों में एकत्र था जो व्यक्तिगत आज़ादी को महत्व देते थे। वास्तव में इन नगरों में व्यापारी और साहूकार ही अधिक थे, जिनकी दृष्टि में आर्थिक लाभ से निर्भीकता और उपलब्धि की भावना की अधिक अनुभूति होती थी। ये लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उन पर कोई ऊपर से कोई सांस्कृतिक मानदंड लादा जाए, जैसा कि रोमन साम्राज्य के उत्कर्ष काल में और कन्फ्यूशियस के चीन में किया गया था। पुनर्जागरण में जो कुछ भी उपलब्धि हासिल हुई वह प्रत्यक्षतः इस नवीन व्यक्तिवाद से ही प्रेरित थी।